आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है 15 मार्च, दिन सोमवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम दिन भर है। आज बात करेंगे व्हीलचेयर पर बैठकर हुंकार भरती ममता बनर्जी की। साथ ही बीजेपी ने अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, वो स्ट्रेटजी क्या है समझेंगे। फिर भारत के उस स्टैंड पर भी बात होगी जो उसने ब्रिटेन में नस्ल भेद के मामले पर लिया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये भारत का ब्रिटेन को कूटनीतिक जवाब है, क्योंकि ब्रिटेन भी लगातार किसानों के मामले पर कुछ न कुछ कहता रहा है। कोरोना से हाल बेहाल है महाराष्ट्र का, लेकिन और कौन से राज्य हैं जिनकी हालत सीरियस है, उस पर भी बात करेंगे। फिर लास्ट में बैंकों की हड़ताल पर हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि प्राइवेटाइजेशन को सरल भाषा में समझाएं, जिस पर कर्मचारी नाराज हैं। लेकिन सबसे पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं।
बाटला एनकाउंटर केस में आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। आरिस खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि 6 मई 2020 के बाद से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क, उपकर और अधिभार से 33 रुपए और 32 रुपए प्रति लीटर की कमाई हो रही है, जबकि मार्च 2020 से 5 मई 2020 के बीच ये आय 23 रुपए और 19 रुपए प्रति लीटर थी। भारत के किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में बहस होने के बाद अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन मुद्दों को सही स्थान पर उठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें व्हीलचेयर से ही सड़कों पर उतरना पड़ा। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम और बांकुरा के रानी बांध रैली में कार्यकर्ताओं की हत्या और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में हैं। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए। साथ ही अदालत ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं। केंद्र सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार कर रही है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि सरकार ने संपत्तियों की बिक्री कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। पाकिस्तानी सिंगर मिशा शफी को सिंगर अली जफर के खिलाफ मानहानि मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ साल पहले उन्होंने अली जफर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। बुमराह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसका ऐलान किया।
आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
बंगाल में रैली ही रैली चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह झारग्राम में रैली कर रहे थे आज। इस बीच उनका चॉपर खराब हो गया। खड़गपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वो बोले कि ममता सरकार बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज भी कसा, कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हुआ है, वो साजिश नहीं थी। क्या बोले अमित शाह वो सुनाता हूँ।
आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। मित्रों, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे।
उधर ममता बनर्जी की भागदौड़ भी कम नहीं है। व्हीलचेयर पर तो वो हैं, लेकिन एक्टिव पूरी हैं। पुरुलिया में आज रैली की उन्होंने, निशाने पर बीजेपी ही रही। कहा कि बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस के चाइना यानी कि ये नहीं चाहिए।
मैं अभी अस्वस्थ हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकती। मैं जो बोलूंगी उसे आप सब दोहराना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बीजेपी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कांग्रेस, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सीपीएम, नहीं चाहिए बीजेपी को विदाई दो। खेला होगा, लड़ाई होगी।
बीजेपी इस चुनाव को बहुत स्ट्रेटजिकली लड़ रही है। अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी पार्टी ने। सीट बंटवारे को लेकर खूब चर्चा है, हम भी करेंगे, लेकिन पहले पुरुलिया में हमारे रिपोर्टर अनुपम मिश्र से जानते हैं कि ममता बनर्जी जो व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं, क्या इससे चुनाव में उनके प्रति समर्थन में कोई बदलाव दिखा है?
जी देखिए, व्हीलचेयर पर अब तक सिर्फ 3 रैलियां की हैं ममता बनर्जी। कल से ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है। कल कोलकाता में जो पदयात्रा थी उसमें व्हीलचेयर में वो शामिल हुई। कहा यहाँ पर काफी भीड़ थी कोलकाता में। इसके अलावा पुरुलिया में जब वो पहुंची, पुरुलिया में भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो देखिए, भीड़ का पैमाना अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ऐसे भी अगर कहीं जाती हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो भीड़ में बहुत ज्यादा अंतर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों की भावनाओं में जरूर ये अंतर दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि जो व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार कर रही है ममता बनर्जी, इसका मुख्य मकसद यही है कि सहानुभूति मिले लोगों की, कि एक महिला मुख्यमंत्री, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ये मुख्य मकसद है टीएमसी का कि ममता बनर्जी इस तरह से व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार करते हुए अगर दिखती हैं तो काफी हद तक सहानुभूति की एक लहर दौड़ेगी उनके प्रति। और दूसरा, अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है कि उनका पांव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो आगामी कई दिनों तक हमें वो व्हील चेयर पे ही चुनाव प्रचार करती दिखेंगी। हालांकि उनको तकलीफ हो रही है, समय भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि व्हील चेयर से हेलीकॉप्टर पर ले जाना, फिर हेलीकॉप्टर से उतर के व्हील चेयर पे आना, गाड़ी में बैठना, इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी आज जैसे उन्होंने 2 रैलियां की हैं, कल बांकुड़ा में 3 रैलियां हैं, इसके बाद पश्चिम मिदनापुर में है, इसी बीच में मैनिफेस्टो उनका आने वाला है, तो लगातार कार्यक्रम है, समय कम है ममता बनर्जी के पास। उनको इसी के साथ फिलहाल चलना होगा आगे, लगातार 2-3 रैलियां हर रोज करनी ही होंगी, क्योंकि उनके सामने समक्ष जो विपक्ष है, खासतौर पर बीजेपी का, स्टार कैंपेनर्स एक तरह से हम कहें तो मतलब कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। कभी जेपी नड्डा, कभी योगी, कभी प्रधानमंत्री मोदी, तो कभी अमित शाह आ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी एकमात्र चेहरा है टीएमसी का, तो वो अपने को रिलैक्स नहीं कर सकती, उनको लगातार चुनाव प्रचार करना ही होगा, वो कर रही हैं। और इसी वजह से जल्दी उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली। डॉक्टरों के ना करने के बावजूद डॉक्टर्स की टीम अब उनके साथ घूम रही है और लगातार चुनाव प्रचार में वो इसी वजह से आई हैं, क्योंकि समय काफी कम रह गया है पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है।
कल बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी की। विधानसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने जो है 3 सांसदों को उतारा है, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्न दास गुप्ता। बीजेपी ने जो सीट बंटवारा किया है उस पर चर्चाएं काफी हैं कि ये क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है, तो इस पर हमने अपने सहयोगी प्रशांत मुखर्जी से पूछा।
जो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी, बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल से स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको भी टिकट दिया गया है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीपीएम के पुराने नेता भी कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, वामपंथी दलों के हैं, और तृणमूल के सिटिंग एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये टिकट एक चीज तो जरूर दिखाता है कि ममता बनर्जी ने जब ये दावा किया था कि उन पर हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपथी वेव क्रिएट हुआ था। उस सिंपथी वेव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इन सीटों का बंटवारा जो कल किया और ये ऐलान किया कि ये केंद्रीय मंत्री और सांसद चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब विनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर। इन सब घटना से पहले अगर हम तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट पर ध्यान दें तो तृणमूल कांग्रेस ने बहुत बड़े नेता, उनके राज्यसभा सांसद मानस रंजन भुइयां को सबांग से एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा है इस बार। डायमंड हार्बर से अगर बात करें तो दीपक हालदर जो एमएलए हैं, इसके अलावा रविंद्रनाथ सिंगूर से तृणमूल के एमएलए रहे, ये दोनों बीजेपी में शामिल हुए थे, इन दोनों को टिकट दी गई है। इसके अलावा जादवपुर से रिंकू नास्कर, जो कभी सीपीएम की नेता हुआ करती थी, काउंसलर थी, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा मनोज राव को कुमारग्राम की सीट से, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उनको दिया गया है, जो 2016 में आरएसपी के उम्मीदवार थे।
अब तक तो ब्रिटेन की संसद में ही भारत के किसान आंदोलन का मामला सुना था, अब भारत की संसद में ब्रिटेन का एक मसला गूंजा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन से रश्मि सामंत का इस्तीफा हुआ था। आरोप उन पर यह था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ नस्ल भेदी लिखा था काफी पहले। रश्मि ने इसके बाद अब ये कहा है, इस्तीफा तो दिया है, मतलब उसके बाद ये कहा है कि उनके खिलाफ भी रंग और धर्म को लेकर टिप्पणियां की गई हैं। जब एक बीजेपी सांसद ने ये मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि हम लोग इस मामले को उचित मंच पर उठाएंगे। लोग अब ये कह रहे हैं कि ये भारत का डिप्लोमेटिक स्ट्रोक है, क्योंकि ब्रिटेन लगातार किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी ये कदम उठाया है और ब्रिटेन को जवाब दिया है। इस पर हमने बात मोहम्मद जीशान से की। जीशान इंटरनेशनल रिलेशंस पर कई किताबों के लेखक हैं, मिडिल ईस्ट की कई सरकारों के लिए आर्थिक और राजनीतिक मॉडर्नाइजेशन पर सलाहकार रहे हैं। यूएन में भारतीय डेलीगेशन के साथ मिलकर उन्होंने काफी काम भी किया है। जीशान, ये जो विदेश मंत्री ने कहा, उससे आपको क्या लगा? मोदी सरकार वाकई नस्ल भेद को लेकर इतना सीरियस है या फिर इसे एक डिप्लोमेटिक टैक्टिस कहा जाए?
बहुत अच्छी सवाल है। मैं इस पर दो बात कहना चाहूंगा। एक ये है कि अगर आप देखें तो सदियों से और सालों से भारत रेसिज्म जैसे इश्यूज पर बहुत बातें किए हैं, यूएन में भी किए हैं और कई सरकारों के साथ किए हैं। जब कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में कुछ रेसिस्ट हेट अटैक्स हुए थे भारतीय स्टूडेंट्स पर, तो उस वक्त जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी इस बात पर स्टेटमेंट्स दिए थे और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए थे। क्योंकि ये एक फंडामेंटल इश्यू है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कि भारत इस इश्यू पर और ऐसे मुद्दों पर जो कॉलोनियलिज्म के रिलेटेड इश्यूज है, इस बातों पर भारत अपने आवाज उठाए। तो मुझे तो लगता है कि ये उतना नया प्रॉब्लम नहीं है और उतना नया पॉलिसी भी नहीं है भारत के। भारत ने इस पर बहुत सारा बातचीत किए हैं सालों से। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि मुझे उम्मीद है कि भारत इस इश्यू को प्रिंसिपल स्टैंड से देखे और इसको गिव एंड टेक पॉलिसी से नहीं देखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसके बाद यूके गवर्नमेंट ने बोल दिए कि भाई अगर आप इस मुद्दे पर कुछ बात नहीं करेंगे तो हम भी फार्मर्स इश्यू पर कोई बात नहीं करेंगे, और इसका रिजल्ट से अगर भारत ये इश्यू पर बात करना छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं होगा भारत के लिए और भारतीय क्रेडिबिलिटी के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय इंडियन डायस्पोरा भी है और कई देशों से भी है, जो ऐसे चाहते हैं कि भारत इस इश्यूज पर एक प्रिंसिपल स्टैंड लें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे ही हो रहा है।
अच्छा जीशान, अगर हम दोनों देश एक दूसरे को प्रभावित करने वाले ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिन पर हम दोनों ही देश असहज भी हैं, तो क्या ये दोनों देशों के बीच में खटास नहीं बढ़ेगी? हम टकराव की राह पर नहीं हैं?
नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि भारत अब एक ऐसा देश है कि बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल देश है और बहुत सारे देशों के लिए भारत अब महत्वपूर्ण हो चुका है। और ब्रिटेन के भी यही सिचुएशन है कि अब जब ब्रेक्सिट हो चुका है तो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को भी बाहर से, यूरोप के बाहर से बहुत सारे अलायंस की ज़रूरत है और ट्रेड पार्टनरशिप की ज़रूरत है और भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय वर्कर्स का भी ज़रूरत है। तो इसीलिए अब कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने कुछ इमिग्रेशन रिफॉर्म किए थे जिससे अब इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर थोड़ा बेनिफिट हुआ है। और अगर कोई भारत से स्टूडेंट ब्रिटेन को जाए तो उनको अब वर्क परमिट वर्क करने के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क करने के लिए अब थोड़ा सा आसान हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जिसके कारण मुझे तो लगता है कि भारत अब ब्रिटेन के लिए पोस्ट ब्रेग्जिट ईरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और बात जो है मुझे लगता है कि, और ये तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी कहा था कुछ दिन पहले, कि भारत जैसे ही भारत आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण देश बन रहा है, तो जब भारत के इम्पोर्टेंस बढ़ता है तो आउटसाइड वर्ल्ड को भी भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनल पॉलिसीज में बहुत दिलचस्पी होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया तो ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाएगा, और अगर भारतीय इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया तो ये भी ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ाव पड़ सकता है इससे। तो इसीलिए मुझे तो लगता है ये तो एक डबल एज स्वॉर्ड बन गया है भारत के लिए, कि एक तरफ से तो हम चाहते हैं कि भारत की इन्फ्लुएंस बढ़े, भारत और भी महत्वपूर्ण बने, लेकिन इसका कारण जो हो रहा है और अमेरिका के साथ भी हुआ है, चाइना के साथ भी हुआ है, कि जब एक इमर्जिंग पावर और भी बहुत पावरफुल बनता है और महत्वपूर्ण बनता है तो उनके पॉलिसीज का बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होता है, और इसके कारण ये आउटसाइड वर्ल्ड को इस पर बहुत सारा दिलचस्पी होता है।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।
एक बार फिर भारत में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटों में 26,500 नए मरीज मिले हैं, 3 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। अकेले 16,600 लोग महाराष्ट्र में बीमार हुए। इस साल एक दिन में इतने ज्यादा लोग किसी एक राज्य में कहीं बीमार नहीं पड़े। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद आप बात करें तो पंजाब देख लीजिए, 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग गया है। मध्य प्रदेश में भी अचानक उछाल आया संख्या में, तो शिवराज सरकार यहाँ सख्ती के मूड में है। हमने फोन मिलाया भोपाल और बात की हमारे रिपोर्टर रविशपाल सिंह से, और मध्य प्रदेश के ताजा हालात जाने आज।
देखिए, आपको बता रहे कि मध्य प्रदेश वो राज्य था जो कि रिकवरी में सबसे ऊपर आ गया था। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं, जनवरी 2021 के बाद से यहाँ पे मामले लगातार कम हो रहे थे। 10 जनवरी 2021 में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, तकरीबन 610 के आसपास। लेकिन अभी मार्च में देखने को आ रहा है कि बीते 3 दिनों से लगातार 600 से ज्यादा मामले पॉजिटिव नए सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और बीते 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो ये करीब करीब 643 के आसपास नए कोरोना पॉजिटिव केस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। लेकिन चिंता की बात सिर्फ ये नए मामलों की नहीं है, दरअसल सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो पॉजिटिविटी का प्रतिशत है वो बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट जनवरी 2021 में घटकर करीब करीब 1% तक चला गया था, वो अब बढ़ के एक बार फिर से 4.2% के करीब पहुंच गया है। ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ है उसके बाद टेस्टिंग कम हो रही थी, और कम टेस्टिंग में मामला जो कोरोना के नए पॉजिटिव मामले हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं से ज्यादा चिंतित है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब जो एक बार फिर से आया है ये थोड़ी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इंदौर जो हमारा शहर है मध्य प्रदेश में, आर्थिक राजधानी भी जिसे कहा जाता है, वहां पर कोरोना के यूके स्ट्रेन के 6 मामले कंफर्म हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी चिंता की बात और ज्यादा है। इंदौर और भोपाल ये वो 2 शहर हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में जो एक तरीके से हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां पर रोजाना 100 से 150 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने कोरोना समीक्षा बैठक भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भोपाल में थे 2 दिन, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और वैक्सीनेशन को लेकर के बातचीत हुई है। और साथ ही में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा था कि दरअसल लोग जो लापरवाह हो चुके हैं उसकी वजह एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है।
रविशपाल जी, मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू की अटकलें हैं, सरकार ने कुछ बोला है क्या अभी, और कितने चांस लग रहे हैं आपको वहां नाइट कर्फ्यू के?
देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी नाइट कर्फ्यू विचार किया जा सकता है। 8 मार्च जो बीता महिला दिवस गया है, उससे पहले 2 दिन पहले कोरोना समीक्षा बैठक की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद थे, साथ ही में गृह विभाग के अफसर भी मौजूद थे। उसमें यह तय किया गया था कि यदि 8 मार्च तक मामले कम नहीं होते हैं या हालात नहीं सुधरते हैं तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि कोरोना समीक्षा बैठक के बाद भोपाल में मामले कम आने लगे थे, तो फिलहाल 8 मार्च को तो ये त्याग दिया गया था विचार। इसके बाद ये तय किया गया था कि रविवार यानी कल जो बीता रविवार गया है उसमें कोरोना के मामले यदि कम नहीं होते हैं तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा इंदौर भोपाल में। वो रविवार भी बीत चुका है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मंगलवार को एक बैठक और की जाएगी, उस बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि लगातार भोपाल और इंदौर में खासतौर से जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू पे विचार किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता नाइट कर्फ्यू की, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार ये बात कर चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में लगाया जा सकता है, तो संभावना इस बात की है कि नाइट कर्फ्यू कम से कम इन 2 शहरों में तो लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चिंता की बात सरकार के सामने है, महाराष्ट्र की सीमा से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट वहां पर बढ़ रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। और इसीलिए बड़ा फैसला किया है सरकार ने वो ये कि महाराष्ट्र से जो भी मध्य प्रदेश आएगा उनकी पहचान कर 7 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। ये प्रशासन ने गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के नाइट कर्फ्यू की बात हो या फिर आने वाले दिनों में सख्ती बरतने की बात हो, सरकार इस पे बड़े कड़े फैसले ले सकती है मंगलवार को बैठक के दौरान।
देश भर में आज बैंक हड़ताल चली, कल भी रहेगी। आपको शायद याद हो, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों के विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। हालांकि किन 2 बैंकों का निजीकरण होगा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ 9 बैंक यूनियनों के समूह UFBU यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की बैंक हड़ताल की घोषणा कर दी। एक आज दिन था, कल भी एक रहेगा, और इस हड़ताल में जो है SBI, कैनरा बैंक समेत कई PSU शामिल भी हुए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है एक AIBEA, उसके सेक्रेटरी हैं CH वेंकटचलम। उन्होंने दावा किया कि देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। आपको शायद जानकारी हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में जीवन बीमा निगम जो है LIC, उसमें IDBI बैंक का मेजोरिटी हिस्सा बेच दिया था। इसके अलावा पिछले 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों का मर्जर हो चुका है। देश में 12 सरकारी बैंक हैं फिलहाल, और सरकार फिस्कल ईयर 2021-22 में 2 बैंकों का निजीकरण और करना चाहती है। अब आसान भाषा में यदि समझना हो कि भाई इसका मतलब क्या है और बैंकों पर इसका असर क्या होता है, तो हमने पूछा इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर मनीष दीक्षित से।
जी, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सीधे ये समझिए आप कि इनका जो नियंत्रण है वो सरकार अपने हाथ से नहीं लेना चाहिए। मिला के सरकार दरअसल एक नजरिया ये होता है कि सरकार सिर्फ वो काम करे जो इसके लिए जरूरी है, इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों में सरकार हाथ न लगाए। वो ठीक है, बांध बनाना है और ये सब काम करना है, फौज देखना है और बाकी सब काम करती रहे सरकार, तो उसको निजी हाथों में देना, इसके मकसद कई होते हैं। जैसे माना जाता है कि भाई सरकारी कर्मचारी के जो नजरिया होता है काम करने का, वो एक बड़ा लेथार्जिक होता है, तो उससे प्रॉफिट नहीं बनता है, कोई भी संस्थान प्रॉफिट में नहीं आ पाता है, या आ पाता है तो मार्केट की तुलना में कम आ पाता है। जितना मार्केट में प्राइवेट प्लेयर कमा रहे होते हैं वही अगर सरकारी संस्थान कमाता है तो वो कम होगा, बहुत कम होता है उसका। इस वजह से निजीकरण को महत्व दिया गया और निजीकरण की तरफ सरकारें बढ़ी हैं लगातार। ये आप देख रहे हैं 1992 से उदारीकरण का, जब से आया है देश में उदारीकरण की तरफ बढ़ा है, तब से ये हो रहा है। और कुल मिला के इसका है कि सरकारी जो जिस तरह की नीतियां होती हैं और मैनेजमेंट होता है वो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है।
मनीष, 1969 में 14 बैंक प्राइवेटाइज किए गए, फिर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब ये 52 साल बाद ये चक्र उल्टा क्यों घूम रहा है, खासकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ये बात दोहराई थी कि सरकार का काम नहीं है व्यापार करना।
कि सरकार अभी निजीकरण क्यों करना चाहती है? सरकार को इस समय सही बात यह है कि कोविड से बाहर आई है, एक तरह से अब बाजार खुले हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार सिर्फ पैसा अपना जो राजकोषीय घाटा है हमारा वो बजट के बनिस्बत 9% पहुंच गया है। इसको सरकार को लाना ही लाना है, 6% कम से कम लाना है। इसके लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। सरकार ने जो अपना विनिवेश का लक्ष्य रखा है इस बार वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो वो तो खैर अचीवेबल है ही नहीं। और वो अचीव करने के लिए सरकार स्वाभाविक है कि अपनी संपत्तियां बेचेगी या बाजार में जाएगी। तो इसलिए बैंकों का निजीकरण हो या LIC का निजीकरण हो या विनिवेश करना हो, LIC का विनिवेश होगा, निजीकरण तो नहीं होगा खैर, तो उससे सरकार का मकसद सिर्फ एक मकसद है आज की तारीख में, वो है पैसा कमाना। क्योंकि सरकार को अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए, जो बजट में कमिटमेंट किया गया है उतना पैसा रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, पिछला पूरा साल हमारा वैसे ही निकल गया है, तो इस बार अब हमें सरकार को पैसे चाहिए। तो ये हुआ दूसरा सवाल। अब पहले सवाल का जवाब कि इंदिरा गांधी के समय हो रहा था, तब नेशनलाइजेशन हुआ था, तो तब ऐसा है प्राइवेट घराने जो राजे रजवाड़े थे और जो घराने थे वो बैंक चलाते थे, बैंक ऑफ पटियाला महाराज अपने चला रहे हैं पटियाला बैंक ऑफ पटियाला, तो इस तरह से बहुत सारे बैंक इधर उधर त्रावणकोर सब चल रहे थे पूरे देश भर में, सारे प्राइवेट बैंक थे। तो उनको जब रियासतें चूंकि मर्ज हो गई थी भारत में, तो उनके बैंकों को भी एक सूत्र बांधना था, इस वजह से सरकार ने उनका निजीकरण किया, सरकारीकरण किया, एक नेशनलाइजेशन हुआ और उस तरह कई बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया और इस तरह बहुत सारे बैंक जो है बनाए गए। तो ये दूसरा जवाब था। अब इसके बाद अभी क्यों जरूरत पड़ी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सरकार के पास पैसे नहीं है इसलिए सरकार बेच रही है, और इसका विरोध भी हो रहा है, आप देख ही रहे चारों तरफ से विरोध हो रहा है। और क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि वो सरकारी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकले, प्राइवेट बैंक जब भी बैंक प्राइवेट होगा तो वहां पर टास्क बेस्ड काम होता है, ये काम करेंगे तो नौकरी पर रहेंगे, और सरकारी कर्मचारी ये नहीं चाहते हैं कि वो अपनी सुरक्षा और अपने जो कंफर्ट लेवल है उससे बाहर आए।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
तो आज के दिन भर को समेटने का हो गया है वक्त। आपको कैसा लगा हमारा न्यूज पॉडकास्ट बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस शो को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और सचिन द्विवेदी ने साउंड मिक्सिंग का काम संभाला है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। देश दुनिया की खबरों के साथ कल सुबह मुलाकात फिर होगी आज का दिन न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट में। तब तक दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।